a child's parents keep telling him that, you know, you are too sensitive. You are too sensitive. You are too sensitive. You are too sensitive. This child is being emotionally repeatedly made to feel bad about himself again and again, again and again. So this child one day stands up and says, you know what? I am sensitive. I feel bad about things. Why are you making me feel worse about my situation? You don't have a solution to my answer. That is okay. But you can't make me feel worse about where I am. That is something I'm not happy about. Or who I am, for that matter, right? What does this child do? Child has drawn a boundary. Now you can imagine what is going to happen next. Either this child is getting thrashed up and this wife is getting thrashed up. If not physically, then definitely emotionally and psychologically. What is this? This is the lashback. This boundary setting construct is what is the biggest problem with trauma-bounded relationships or traumatic experiences. When the victim finally summons the courage and the confidence to go set up a boundary, and then they get repeatedly backed off, they get repeatedly, you know, attacked for it.
Hi friends, welcome to Matlab Podcast. Aur aaj ka hamara topic hai trauma. Yes, this world is thrown around so much. Bahut hyped bhi hai, bahut underrated bhi hai, plus bahut important bhi hai. Aur generally humko lagta hai ki agar hamare sath kuch bahut bada unfortunate event ho jaye, kuch miserable ho jaye, jaise accident, sexual abuse, war, तो एक ट्रॉमा इन्फ्लिक्ट होगा. ये एक्सेप्टेड ट्रॉमा इंसिडेंट्स हैं. बट नहीं, ट्रॉमा कैन बी एनीथिंग ओवरवेलमिंग टू यू एंड इट्स सब्जेक्टिव. एक टॉडलर के लिए एक पॉटी का इवेंट ट्रॉमाटाइजिंग हो सकता है. एक टीनेजर के लिए रिजेक्शन ट्रॉमाटाइजिंग हो सकती है, या फिर ह्यूमिलिएशन ट्रॉमाटाइजिंग हो सकती है अगर उसका टीचर उसको ह्यूमिलिएट कर देता है पूरी क्लास के सामने. इट कैन बी एज ट्रॉमाटाइजिंग एज अ सेक्सुअल अब्यूज़. इट्स जस्ट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. उसको सेम इन्वेसिव, कंफ्यूजिंग, हर्टफुल, शेमफुल फीलिंग्स आ सकती है जैसे एक सेक्सुअल अब्यूज़ के विक्टिम को आती है. तो बॉडी जो हमारी है वो ये सब इवेंट्स, इस फीलिंग्स, इस साइकोलॉजिकल इम्प्रेशंस को स्टोर करके रखती है आपके माइंड में. और जब भी आपके साथ कुछ ऐसा ट्रिगर होता है आपकी आने वाली लाइफ में, वेदर यू आर 15 ईयर ओल्ड, 45 ईयर ओल्ड, 90 ईयर ओल्ड, दोज फीलिंग्स गेट री ट्रिगर्ड अगेन एंड अगेन. यू रिलीव द ट्रॉमा. अब आप बोलोगे इतना ओवर थिंक क्यों करना, इतना ओवर एनालाइज क्यों करना, क्योंकि जनरली लोगों की यही टेंडेंसी होती है और बोलते हैं यार खुश रहो ना, इतना क्यों सोच रहे हो. बट नहीं, ट्रॉमा इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इफ़ यू अंडरस्टैंड ट्रॉमा यू नो हाउ टू प्ले द गेम ऑफ लाइफ. आपके डे टू डे बिहेवियर्स सारे अफेक्ट हो रहे हैं ट्रॉमा से. पीपल प्लीजिंग, सेल्फ डाउट, प्रोक्रेस्टिनेशन, लैक ऑफ फोकस, कॉन्शियसनेस, सब्सटेंस अब्यूज, डिसोसिएशन, ये सब ट्रॉमा मैनिफेस्ट्स ऑल ऑफ दीज बिहेवियर्स. डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सम पीपल आर ट्रॉमेटिक ऑल थ्रू आउट देयर लाइफ विदाउट नोइंग इट. They are living in this autopilot reactive mode. इसलिए ट्रॉमा को जानना, उसको फेस करना, उसको हील करना ज़रूरी है, ना सिर्फ आपके लिए बट कि आपकी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी. तो आज हम इस बारे में बात करेंगे. डेफिनेटली वेरी अंडर रेटेड टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड टूडे we have Divya Davar in the house. She is a clinical psychologist and she is co-founder of MEAS, MEAS, which is a startup organization for mental health awareness and rights. So MEAS stand for motivate, educate, assimilate, substantiate healthcare. So they are providing psychotherapy, they are providing safe group environments, also academic learning for people who are passionate about human behavior and sciences. And the substantiate part stands for legal rights for disadvantaged individuals, groups and minorities. First of all, I'm very happy to have you here, and we are discussing this very underrated and important topic which kind of maybe affects everyone, trauma. बट फर्स्ट आई लाइक टू स्टार्ट, आपने एक बहुत ब्यूटिफुल लाइन बोली थी, यू हैव योर रीजंस बट आई हैव माई रियालिटी समवेयर, सो मे बी इफ यू लाइक टू स्पीक ऑन दैट.
Firstly, thank you, Ishita, for having me. This is great. And you're right, trauma is a very underspoken about topic. It is not widely discussed as well, and it has its own reasons for that because of the ambiguity that the term brings. When we talk about you have your reasons, but I have my reality, that statement resonated with me quite a bit. The reason being that trauma can be explained using this statement, because everybody's expression of trauma and understanding of trauma is different. Trauma har kisi ko ho sakta hai, uska koi predisposition nahi hota. Aisa nahi hai ki mere khandan mein kisi ko trauma hai to mujhe trauma ho sakta hai, jo ki bahut sare mental disorders, psychological disorders ke sath hota hai. Trauma ek aisi cheez hai jo bahut bari ek invisible मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर बन के घूमती रहती है, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता है कि वो एक्चुअली ट्रॉमाटाइज्ड हैं. दूसरी चीज, ट्रॉमा एक ऐसा टर्म है क्योंकि वो इतना सब्जेक्टिव है और सब लोगों का एक अपना एक्सपीरियंस होता है ट्रॉमा को लेके, उसकी वजह से हम ट्रॉमा को बहुत अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं, और कभी कभी वो मिसडायग्नोस भी होता है. कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो एक्चुअली ट्रॉमा की डेफिनेशन फुलफिल नहीं करते हैं, बट हम उन्हें बोलते हैं कि वो ट्रॉमेटिक एपिसोड्स से निकले हैं, क्योंकि जो उनका एक्सपीरियंस है ट्रॉमा का वो उनका अपना एक्सपीरियंस है. वो एक्सपीरियंस मैं उनसे ले नहीं सकती, वो एक्सपीरियंस उनकी रियलिटी होता है. दैट स्टेटमेंट दैट यू हैव योर रीजंस बट आई हैव माय रियलिटी, इवन दो जब जो मैंने रील बनाई थी जिसमें मैंने इसको यूज किया था, वो कंस्ट्रक्ट थोड़ा अलग था, वो हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे थे उस रील में, बट वो एक स्टेटमेंट है जो एक्चुअली हर किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ एप्लीकेबल है, बट ट्रॉमा के साथ काफी ज्यादा है.
ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट गो विद द बेसिक. वी आर आल्सो लाइक रिवॉल्विंग अराउंड दिस टर्म, बट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि ट्रॉमा है क्या, और क्या कैटेगराइज करे, कैसा बिहेवियर इसको कॉज करता है, मे बी कैसा एनवायरनमेंट या कैसा इमोशनली इमेच्योर केयर गिवर का बिहेवियर इसको कॉज करता है, और कैसे हम कैटेगराइज करते हैं ट्रॉमा को, मे बी एज ग्लोबल, पर्सनल, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, ये सब टर्म्स आर लाइक थ्रोन अराउंड. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू नो कि लाइक यू ऑल्सो मैंशनड इट, इफ़ यू आर लिविंग एंड ब्रीदिंग यू मस्ट हैव हैड सम ट्रॉमा, इज इट लाइक ट्रू?
नॉट नेसेसरी, because mm-hmm. there are components which protect us from trauma as well, or the experience of trauma. Ek kaam karte hain, step wise chalte hain. So I'll do all definitions first, the theory khatam ho jati hai pehle. Bahut theoretically if I go about this, what is trauma? Trauma ek emotional response hota hai jab bhi koi ek insaan ek single incident ya phir ek series of traumatic ya phir distressing, usko hum distressing incidences bolte hain, जो कि एक साइकोलॉजिकल या इवन इमोशनल नेचर के हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं. हर किसी का ट्रॉमा रिस्पॉन्स अलग होता है, हर किसी का ट्रॉमा एक्सपीरियंस भी अलग होता है. एक इंसान को जिस एक्सपीरियंस में ट्रॉमा हुआ है या जिस सिचुएशन में ट्रॉमा या ट्रॉमा का एक्सपीरियंस हुआ है, जरूरी नहीं है कि दूसरे इंसान को भी ऐसा हो. इसका एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल होता है कि अगर दो बच्चे एक ही घर में बड़े हुए हैं, एक बच्चे को पेरेंटिंग स्टाइल से ट्रॉमेटिक फीलिंग्स आती हैं, फीलिंग होता है कि हाँ आई हैव गॉन थ्रू अ ट्रॉमा विद माय सेट ऑफ पेरेंट्स, द सेकंड चाइल्ड जो कि उसी एनवायरनमेंट में बढ़ा हुआ है बट उसको वो ट्रॉमेटिक फीलिंग्स नहीं आती है. तो जो आपने बोला कि अगर आप लिविंग ब्रीदिंग है तो आपको ट्रॉमा हुआ होगा एट सम पॉइंट, मे नॉट बी ट्रू, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें हमें कंस्ट्रक्ट होते हैं रेजिलियंस होता है, अपनी जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो उससे लड़ने की एक ताकत होती है. बहुत ही लेमैन शब्दों में, अगर किसी का रेजिलियंस ज्यादा है, और रेजिलियंस बढ़ाया भी जा सकता है ऐसा नहीं है, पर अगर किसी का इननेटली रेजिलियंस ज्यादा है तो उनको एक्सपीरियंस ऑफ ट्रॉमा ही कम होता है. तो ये जरूरी नहीं है कि आप हर किसी को ट्रॉमा फीलिंग हो. हाँ, ये जरूर मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप लिविंग ब्रीदिंग है तो आपकी जिंदगी में डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंस जरूर हुआ हो, ये हो सकता है. जैसे आपने बोला एक छोटे बच्चे के लिए बाथरूम ना जा पाना एक डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंस है, एक अडल्ट के लिए रिलेशनशिप एक डिस्ट्रेसिंग यू नो सिचुएशन है, जॉब से निकल जाना एक डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंस यस इफ यू आर लिविंग हो सकता है, सबको होता है. ट्रॉमा अटैच टू इट मे नॉट बी देयर. इसी से अगर हम आगे देखें जो आपने बोला कि क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं ट्रॉमा के, ट्रॉमा के रिस्पॉन्सेज जब हम देखते हैं तो हम दो कैटेगरीज में देखते हैं, एक फिजिकल रिस्पॉन्सेज और एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज. फिजिकल रिएक्शंस बहुत ही आपको एविडेंटली दिख जाते हैं ज्यादातर सिचुएशंस में, जो कि हम एंजाइटी के सिम्टम्स के साथ बहुत ज्यादा कोरिलेट करते हैं, जैसे कि हार्ट रेट इंक्रीज होना, पैल्पिटेशंस होना, बहुत ही ऐसा लगना जंपी सा फीलिंग हो रहा है, मसल्स में बहुत टेंशंस होना, नाइटमेयर होना, स्लीपिंग और एपेटाइट में डिस्टर्बेंस होना, बहुत ही ज्यादा फटीग फील करना, बहुत एक्सेसिव अलर्टनेस में रहना एकदम अपटाइट हमेशा, एंड देयर कैन बी सेक्सुअल डिसफंक्शंस आल्सो अटैच्ड टू दिस. ये आपके ज्यादातर फिजिकल सिम्टमटोलॉजी होती है जब हम ट्रॉमा देखते हैं, एंड साइकोलॉजिकल की बहुत लंबी लिस्ट होती है, बट जस्ट टू नेम अ फ्यू, गुस्सा बहुत ज्यादा आना, अपनी फंक्शनैलिटी जो आपकी जनरल फंक्शनैलिटी है वो ना कर पाना, जैसे काम, घर का काम हो गया, जनरल काम हो गया, ऑफिस, स्कूल, बहुत मतलब मन खराब रहना, एंजाइटी बहुत ज्यादा होना, चीजों को अवॉइड करना, बहुत मूड स्विंग्स होना, गिल्ट होना, लोगों से कटा कटा सा महसूस करना, ये सब हमारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं जो हम जनरली देखते हैं. इसके बाद अगर हम ट्रॉमा के टाइप्स बोले या जो आपने बोला कैटेगराइजेशन ऑफ ट्रॉमा है, जनरली हम तीन कैटेगरीज करते हैं, दैट इज अक्यूट, क्रॉनिक एंड कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा. अक्यूट तब होता है जब एक सिंगल एपिसोड होता है जिसके बेसिस पे ट्रॉमा होता है. ये सिंगल एपिसोड एक कार एक्सीडेंट हो सकता है, एक वायलेंट क्राइम देखना हो सकता है, इट कैन ऑल्सो बी एनीथिंग दैट इज जस्ट वन सिंगल एपिसोड. इसको हम इसका टाइम फ्रेम भी होता है, जैसे जो इंसिडेंट हुआ है उसके आकर होने से 3 दिन से लेके करीब करीब 1 महीने के बीच में, इसको हम अक्यूट बोलते हैं. अक्यूट शब्द का मतलब ही इमीडिएट होता है एक तरीके से, जो हम साइकोलॉजी में अक्यूट शब्द काफी इस्तेमाल करते हैं. क्रॉनिक वो होता है जो काफी सारे, मतलब अक्यूट का बड़ा वर्जन, कि काफी सारे एपिसोड हुए होते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म भी होता है. तो जैसे हमारे फिजिकल अब्यूज हो जाता है इसके अंदर आता है, सेक्सुअल अब्यूज होता है, डोमेस्टिक वायलेंस आ जाता है, इमोशनल अब्यूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और लास्ट जो आजकल थोड़ा सा इट्स पिकिंग अप अ लिटिल पेस इज कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, जो कि एक उसका एक अलग टर्म भी आ गया है, अब हम उसे जेनरेशनल ट्रॉमा भी बोलते हैं, या जो कि हम ज्यादातर बच्चों में देखते हैं, क्योंकि वो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे मल्टीपल एपिसोड्स होते हैं, बहुत क्रॉनिक होता है और एक बहुत प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होता है. ये क्रॉनिक से भी काफी हम एक स्टेप आगे चले जाते हैं. सो ये जब हम कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा के बारे में बात करते हैं, हम ज्यादातर चाइल्डहुड से जो बिगिनिंग होता है उसके बारे में बात करते हैं, जो बच्चा एक जिस भी खानदान में हो उसमें उसको या तो घर के अंदर पेरेंटल या सिचुएशनशिप्स की वजह से उसको ट्रॉमा हो रहा है, या फिर चिल्ड्रन जिनके साथ बचपन में सेक्सुअल अब्यूज हुआ है प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उनके लिए भी हम कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा का जो शब्द है वो इस्तेमाल करते हैं. इसमें जो आपने बोला कि जो ट्रॉमा बच्चों में है विथ रिस्पेक्ट टू इमेच्योर पेरेंटिंग या पेरेंटिंग फैक्टर्स, इसके बहुत सारे पेरेंटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, एंड जो एक हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं इमोशनली इमेच्योर पेरेंट्स, इसके ऊपर अभी थोड़ी बहुत रिसर्च होनी शुरू हुई है. व्हाट डू वी मीन बाय इमोशनली इमेच्योर पेरेंट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. इमोशनली इमेच्योर पेरेंट बहुत ही मतलब लेमैन टर्म्स में होता है एक ऐसा पेरेंट जिसको अपने ही इमोशंस के बारे में नहीं पता. अगर जो एक अडल्ट है वो अपने ही इमोशंस नहीं समझेगा, वो ऑब्वियसली जो भी अपने बच्चे को सिखाएगा वो भी यू नो डिसकलर्ड, मे बी इन गैप्स दैट पर्सन इज ट्राइंग टू टीच दैट चाइल्ड व्हाट इट इज टू बी इमोशनली मैच्योर, बिकॉज दे देमसेल्व्स आर नॉट. एक रिसर्च बहुत ये भी बोलती है कि इमोशनली इमेच्योर पेरेंट्स वो होते हैं जिन्होंने खुद जिनके खुद के पेरेंट्स इमोशनली इमेच्योर होते हैं, हेंस द टर्म जेनरेशनल ट्रॉमा, क्योंकि वो इतने जेनरेशन से चलता ही चला जाता है. and every generation passes their trauma to the next generation, so on and so forth. So it just keeps, it's like a snowball effect. और वो तब तक नहीं बंद होता है जब तक कोई एक generation का कोई एक बच्चा decide करे कि अच्छा ठीक है बस अब मुझे ये नहीं, ये pattern मैं बंद करना चाहता हूँ. Which I think has now in recent times come on social media quite a bit, where people are trying to break the generational trauma. And because it is something that has been going on for so long, yes, these children or these adults who are now much better aware about the generational trauma, trying to break the patterns, it's very difficult for them. Just going in a little more, I think examples will be better. What do I mean when I say emotionally immature parent? A parent who sees their children as an extension of themselves. कि वो जो एक्सपेक्टेशंस खुद से रखते हैं वो वही एक्सपेक्टेशन अपने बच्चे से रखते हैं. एक वो, दूसरा वो अपनी जो उनके अपने वैल्यूज हैं वो अपने बच्चों के ऊपर डालना चाहते हैं. तीसरा वो अपने बच्चों को अलग एंटिटीज की तरह नहीं देखते. वो जैसे कि बच्चे फ्रीडम मांगते हैं, बच्चे एक स्पेस मांगते हैं. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बच्चे को अकेला छोड़ दो सड़क पे और अपनी जिंदगी खुद जीने दो, नहीं, बट एक थोड़ा सा स्पेस. As and when they periodically keep getting bigger, physically also and emotionally also, they require a certain amount of space. For example, आपका बच्चा जो 2 साल का है या 1.5 साल का है, आप किसको हाथ पकड़ के चलता है क्योंकि बैलेंस नहीं है. बट वही बच्चा जब 5-6 साल का हो जाता है उसका बैलेंस आ जाता है, उसको हाथ पकड़ के चलने की जरूरत नहीं पड़ती है. और फिर जब वो 15 साल या 17 साल का हो जाएगा तो आप उसको हाथ पकड़ के नहीं चलाएंगे उसे. तो मैंने ये रियलाइज करा कि इस बच्चे को मेरी इतनी जरूरत फिजिकली उस एक सेक्टर में नहीं है. आई एम एबल टू लेट गो. इमोशनली इमेच्योर पेरेंट्स, आई एम नॉट सेइंग फिजिकली डू दिस, बट दे इमोशनली लैच ऑन टू द चाइल्ड वेरी स्ट्रॉन्गली एंड दे डोंट लेट दिस चाइल्ड ग्रो इनटू व्हाटएवर दे वांट टू ग्रो इनटू और दे आर समवॉट बिल्ट टू ग्रो इनटू. ऐसे ही यू नो इमोशनली इमेच्योर पेरेंट्स कैन ऑल्सो blame the child for feeling a certain emotion. They can make corner the child for feeling a certain emotion. They can guilt the child, shame the child. These are all what we call as manipulations that happens in this traumatic relationship, because it is a trauma relationship. So uske bahut sare components hote hain jisme, like I said, if the parent is not aware about their own emotions, they definitely are not aware about the behaviors that they're doing. And hence the impact that behavior has. हम जब साइकोलॉजी की थेरेपी करते हैं उसका एक बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्ट होता है, जो अगर किसी ने सुना हो तो हम उसे CBT बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसका एक बहुत ही मेन कंस्ट्रक्ट है विच सेज दैट योर थॉट्स, योर इमोशंस एंड योर बिहेवियर आर ऑल इंटरकनेक्टेड. आप अगर कुछ फील कर रहे हैं तो आप बिहेवियर भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करेंगे और थॉट भी वहीं से ही आते. ये जो थ्योरी है ये बोलती है कि थॉट इज वेयर इट ऑल कम्स इनटू पिक्चर. अगर मैं नेगेटिव सोच रही हूं तो मैं पॉजिटिव फील नहीं करूंगी और हेंस मैं पॉजिटिवली एक्ट भी नहीं करूंगी. सिमिलरली अगर मैं पॉजिटिव सोच रही हूं तो ना मेरा इमोशन नेगेटिव होगा ना मेरा बिहेवियर नेगेटिव होगा. एक मैंने जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे एक प्रोफेसर ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया था. उन्होंने बोला था अपने दिमाग को एक ऑटो रिक्शा की तरह समझा करो. पीछे के 2 टायर आपकी इमोशन और बिहेवियर होते हैं और आगे का टायर जिसमें आपका हैंडल है वो आपका थॉट है. तो अगर मेरा थॉट जिस भी डायरेक्शन में जाएगा मेरा इमोशन और बिहेवियर उसी डायरेक्शन में जाएगा. मेरा इमोशन और बिहेवियर स्पीड बढ़ा सकता है पर वो डायरेक्शन फिर भी थॉट से ही आता है. तो अगर कोई भी इंसान है जो अपने आप को बदलना चाहता है किसी तरीके से, उसको अपना थॉट पहले बदलना पड़ेगा, फिर मैं इमोशन और बिहेवियर बदल सकती हूँ. थॉट कैसे बदलेंगे? अवेयरनेस नहीं होगी तो थॉट मैं क्यों ही बदलूंगी अगर मुझे लगता है मैं कुछ गलत ही नहीं कर रही. एंड ऑब्वियसली अगर मेरे पास इतने जेनरेशन का ट्रॉमा मेरे ऊपर है, इट्स अ लर्न्ड सिचुएशन. आई हैव लर्न्ड टू बी लाइक दिस. सो आई हैव लर्न्ड टू बी लाइक दिस. चेंजिंग दैट हैबिट इज नॉट गोइंग टू बी सो इजी बिकॉज आई हैव सीन इट, आई हैव ऑब्जर्व्ड इट टू हैपन. Hence, it is something that will keep continuing until and unless somebody stops it or takes a conscious, you know, thought process to make it stop.
Okay. So, the complex trauma could be like, ki agar kisi ke parents उसको इमोशनली इनवैलिडेट कर रहे हैं. लाइक अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो उसको पनिश कर रहे हैं, या अगर किसी बच्चे को रोना आ रहा है तो उसको बोल रहे हैं कि तुम अनग्रेटफुल हो, या तुम तो ज़्यादा ही सेंसिटिव हो, इमोशनल हो. मतलब बेसिकली उसकी इमोशंस को वो इनवैलिडेट कर रहे हैं कि नहीं, दीज आर जो उसके अंदर से आ रही हैं वो ही प्रॉब्लम है. और या फिर वो बोल नहीं पा रहा कि उसकी नीड्स क्या है, कि जैसे मुझे गिटार सीखना है या मुझे गिटार सीखना बंद करना है, तो उसकी नीड्स जो है उसको प्रॉपरली वो समझ रहे हैं या उसको ओवर रिटन कर रहे हैं कि इसका फिर से शुरू हो गया, ये तो यूज़लेस है, ऐसे टर्म्स यूज़ करके ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, जो कि कर देते हैं पेरेंट्स टीचर कभी कभी. बट दैट इज़ वट आई अंडरस्टैंड इज़ कॉम्प्लेक्स ट्रामा, एंड ये बहुत ज़्यादा ओवर द ईयर्स स्पैन ऑफ 10-15 years होते जा रहे हैं.
देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा ओवर सेंचुरीज चल रहा है, बिकॉज एवरी जनरेशन इज फेसिंग इट्स ओन. ओके, लुक एट इट दिस वे, अगर किसी के मम्मी पापा हैं जो बच्चा बोल रहा है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ मेरे पे ट्रॉमा डाल रहे हैं, मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, जैसे मुझे इनवैलिडेट करा जा रहा है, मुझे गिल्ट दिलाया जा रहा है, मुझसे एक्सपेक्टेशंस ऐसी रखी गई हैं जो खुद से एक्सपेक्टेशंस है. मेरे पापा चाहते थे वो IIT में चले जाए, पर वो IIT क्लियर नहीं कर पाए, तो मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि मैं IIT क्लियर करूं, और मेरे को नहीं करना इंजीनियरिंग XYZ. आई एम जस्ट गिविंग वन वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर दिस. नाउ इफ यू लुक वेरी क्लोजली, दिस पेरेंट हु इज पुटिंग प्रेशर ऑन दिस चाइल्ड हैज ऑल्सो गॉन थ्रू द सेम अमाउंट ऑफ ट्रॉमा, नो? बट ओवर द इयर्स दे हैव जस्ट लर्नड कि ये तो ऐसा ही है, ये तो करना ही है. क्यों मैं, जब बच्चा बोलेगा आप दादाजी को बोलो कि वो आपसे ऐसे बात ना करें, मैं क्यों बोलूं उनको, वो तो ऐसे ही है, वो नहीं बदलेंगे, अब वो नहीं बदलेंगे. दैट सेम स्टेटमेंट कि अब वो नहीं बदलेंगे, यही फादर अपने बच्चे को बोलता है कि अब मैं नहीं बदलूंगा, एंड देन सो ऑन एंड सो फॉर. दिस पैटर्न जस्ट कीप्स कंटिन्यूइंग. सी एट सम पॉइंट दिस पेरेंट हैज ऑल्सो सफर्ड ट्रॉमा, इट्स जस्ट दैट दिस ट्रॉमा वॉज नॉट रिकग्नाइज्ड, एंड दे जस्ट felt because it's a pattern and everybody around them or people around them have just gone through the trauma, it is okay to continue the trauma.
They don't know it is a trauma.
Yes. एक बहुत ही simple सा example है. बहुत साल पहले मेरे घर में मेरी mother, उनकी एक maid थी, and वो maid एक दिन घर आई और वो बहुत ही, मतलब ऐसा लग रहा था that she's been beaten up pretty bad. So my mother got very concerned. So she asked her, कि क्या हो गया? तो इसने कहा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कल रात को बहुत मारा. So my mother said that why don't you call the police? Why don't you do something about it? There are so many things you can do. Because it was not the first time that it had happened. It had happened multiple times, but इस बार बहुत ही ज़्यादा हो गया था. And मेरी मम्मी उनको progressively बोले जाती थी हर बारी कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो. And this woman would just keep ignoring. So at that moment, she says, why doesn't your mother-in-law do something? She also lives with you. Why doesn't she stop her own son? So at that point, this maid of my mom said, ki wahi to instigate karti hai ki isko maro. So then my mother was very curious, ki aisa kyun ho raha hai? So she's like, kyunki wo khud unke husband ne unko bahut mara tha aur unki mother-in-law bolti thi unke husband ko unko marne ke liye. So she has learned that this is the only way to maintain the woman inside the house. Is to beat her. Now, there is a very, very high probability that when this woman's son gets married, she is going to do the same thing to her son, because there is no awareness. It is not considered trauma. It is considered, ye to chalta hai, ye to hota hai. Domestic violence is very common. Ye to chalta hai. Koi dikkat nahi hai isko karne mein to. Kya farak pad jayega? This is exactly what we mean when we say generational trauma. This current woman in her current state is suffering. She knows what is happening to her is wrong. But because it will go on for so long and so strong, that eventually over a period of time, she'll learn this behavior. She'll be like, yahi tarika hai karne ka. And because, like I said, the manipulation, it's a form of gaslighting. Or it's a form of making this person feel that it is your fault that you're in this situation. So you suffer through this. Because the only way to get out is to suffer through it. Father bachche ko bolta hai, agar bachcha bol raha hai, mujhe depression ho raha hai, main nahi padh sakta, mereko suicidal thoughts ho raha hai, main mar jau isko padhne se achha. Father bolga, aisa to sabke saath hi hota hai, sabhi ka man karta hai. Sabhi bolte hain ki main to mar jana chahta hu, mujhe nahi padhna. what have I done? I'm not saying that I would tell the child, drop your books, don't study anymore. That's not what I'm trying to say. But there are 100 better ways of having the same conversation with this child without invalidating them, without making them feel lesser about themselves, without doing anything that will make this child second guess themselves or get deeper into that state of traumatic experience. Or isko badalne mein, agar jo insaan wo experience dila raha hai, may be it my own child, be it somebody else, agar wo insaan samajh lega, ye traumatic cycle wahin pe end ho sakta hai. But ye bahut mushkil hota hai. It's when you are younger, aap ek relatively better state mein hote ho usko ladne ke liye. Kyunki aap energetic bhi zyada ho, awareness bhi zyada hai. Aap aaj ke zamane mein to chalo, in the last 5-7 years, the awareness is quite a bit. And I am energetic to fight this war. People who are older, who have parents who are now 80, 90 years old, or parents who probably don't exist now, for them to change, it just seems like a futile process. Ab kyun badlun? Main bahut sare apne clients ko kabhi kabhi ye bolti hu ki jab mere paas koi 75-80 years old geriatric patient aata hai therapy ke liye, मैं उनके साथ सिर्फ रिहैबिलिटेशन का काम करती हूँ. मैं उनको उनकी सोच बदलने पे बहुत ज्यादा जोर नहीं डालती हूँ या उनकी पर्सनैलिटी चेंज पे बहुत ज्यादा जोर नहीं डालती. क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग मुझे मुड़ के बोलेंगे कि मैंने तो 80 साल की अपनी जिंदगी जी ली, मुझे तो आज तक इस बिहेवियरल पैटर्न से मुझे तो कभी दिक्कत नहीं हुई है. तुम्हें मेरे बिहेवियरल पैटर्न से दिक्कत है तो तुम बदलो ना, मैं क्यों बदलू, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है. तो इन लोगों के साथ जब आप थेरेपी करना शुरू करते हैं कोई भी प्रकार की, इट्स ऑलवेज अ रोड ब्लॉक बिकॉज द एटीट्यूड फॉर चेंज इज ओनली नॉट देयर. आई हैव सीन वेरी वेरी फ्यू पीपल हु आर एट दैट एज हु वांट टू बी इन्वॉल्व्ड इन थेरेपी टू चेंज. मोस्ट ऑफ देम आर इन थेरेपी फॉर अ रिहैबिलिटेशन पर्पस कि किसी का कॉग्निटिव यू नो डिक्लाइन हो रहा है तो उनके लिए हम काम करते हैं. बट पर्सनैलिटी चेंज, जेनरेशनल ट्रॉमा को हील करेंगे चेंज, ये शायद लेस देन 1% इज वॉट इज दिस पॉपुलेशन हु वुड वॉन्ट टू कम इन टू थेरेपी. सो यू नो वेन वी टॉक अबाउट पेरेंटिंग एंड ट्रॉमा, अगेन आई विल रीइंस्टेट दिस, नॉट एवरी पेरेंट विल गिव देयर चाइल्ड ट्रॉमा बिकॉज सम फैमिलीज हैव हील्ड जेनरेशनल ट्रॉमा एंड सम फैमिलीज डोंट हैव इट. We can't generalize and be like everybody has it. No. Not every family is passing on generational trauma. Some families passed that before only. They have recovered before only. So the parents don't have some. A lot of the parents presently have changed because they have also become aware in the recent times. So they have changed their approaches with their child. And that genuinely does help. If the parent changes, the effect on the child is very sudden and quite, I would say, beneficial as well.
So what I understand is empathy. अभी अगर कोई 35-40 साल की एज में ये रियलाइज करता है कि उसको जनरेशनल ट्रॉमा है तो पेरेंट्स को ब्लेम करके कुछ नहीं होगा. यू हैव टू हैव empathy विद योर सेल्फ विद योर पेरेंट्स एंड इफ यू वॉन्ट टू स्टॉप इट देन मे बी डू इट फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर चिल्ड्रन एंड जस्ट हैव empathy फॉर विद योर पेरेंट्स.
Yes, in some constructs that is true. But there is one problem in this factor. There is a lot of pushback. जब हम किसी भी relationship के बारे में बात करते हैं, एक बहुत ही important construct है जिसको हम boundaries बोलते हैं. इसको physical sense में समझना बड़ा आसान होता है. जैसे if you are walking on the road, will you let a stranger touch you? आप दूर चलेंगे या मतलब इट्स अ अंडरस्टूड कंस्ट्रक्ट कि डोंट टच मी, आई विल नॉट टच यू, वी स्टे अवे फ्रॉम वन अनदर. हम अपने दोस्त से मिलते हैं, कोई मतलब दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त नहीं है, सिर्फ दोस्त है, तो उससे हम हैंडशेक कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक साइड हग हो जाएगा. एक अच्छा दोस्त है मेरा, बहुत जिगरी दोस्त है, उससे मैं अच्छे से गले लगाऊंगा. एक मेरा इंटीमेट पार्टनर है, उसके साथ मैं और फिजिकली क्लोज हूँ. तो हमारी अगर आप देखें फिजिकल बाउंड्रीज रिलेटिवली वेल डिफाइंड होती, मतलब इट्स एन अंडरस्टूड कंस्ट्रक्ट। कोई किसी से मैं पहली बार ही मिल रही हूँ, वो इंसान आके मुझे झप्पी नहीं दे सकता, क्योंकि इट्स एन अंडरस्टूड कंस्ट्रक्ट कि देयर इज सम अमाउंट ऑफ फिजिकल डिस्टेंस दैट यू मेंटेन विद मी बिकॉज ऑफ द इट्स अ सर्टेन नॉर्म दैट इज एस्टैब्लिश्ड। क्या हमारी इमोशनल बाउंड्रीज ऐसी ही डिफाइंड है? बिल्कुल भी नहीं। मेरा ज्यादातर समय और ज्यादातर वक्त थेरेपी में, जब मैं टीनेजर्स, यंग एडल्ट्स, इवन एल्डरलीज 45-50 ईयर ओल्ड्स को देखती हूँ, मेरा ज्यादातर फोकस होता है उनके साथ बाउंड्री सेटिंग सीख पाना। बाउंड्री सेटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट्स इन एनी रिलेशनशिप, ट्रॉमा बाउंडेड तो स्पेशली, बट अदरवाइज ऑल्सो। जस्ट टू हैव हेल्दी रिलेशनशिप्स यू नीड टू अंडरस्टैंड ट्रॉमा। कोई इंसान आपके घर पे आता है, घंटी बजाता है, आप मेन डोर खोलते, वो इंसान डायरेक्टली चल के आपके बेडरूम में नहीं जाता है। पहले वो लॉबी में बैठेगा, फिर वो लिविंग रूम में बैठेगा, फिर वो धीरे धीरे करके अंदर आता है। क्यों? आप उसको कितना ट्रस्ट करते हैं, वो ट्रस्ट फैक्टर पे वो इंसान धीरे धीरे घर के एक एक स्टेप को आगे आता है। कोई सडनली मेरे अंदर नहीं घुस जाता है। सो व्हेन इट कम्स टू गेटिंग ट्रीटेड फॉर दीज थिंग्स और व्हेन इट कम्स टू दैट एम्पथी कंस्ट्रक्ट, यस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एम्पथी, नॉट जस्ट विथ ट्रॉमा and your generational trauma, but in general to be very empathetic as an individual, to understand that every generation is going to be different from one another and I need to give them their space as well. But when I try to become empathetic, that does not mean that I am letting this person into my space just because they share a bond with me. They have to have a certain amount of trust with me, because in a lot of traumatic trauma, you know, bonded relationships, people use information to get to you. I am trying to be empathetic to you, but you're trying to manipulate me into giving you something that you want from me just because I'm being empathetic towards you. I am not lashing back at you. I'm not fighting you, or I'm not being aggressive towards you, passively or actively. That does not translate into, okay, you can walk over me. आप जैसे ही किसी के साथ वो बाउंड्री सेटिंग करेंगे, आप देखेंगे कि वो इंसान आपके तरफ, देर इज अदर अ पैसिव अग्रेशन और अ वेरी एक्टिव अग्रेशन। वेन एवर देर इज समबडी हु हैज अ ट्रॉमा बेस्ड रिलेशनशिप, द पर्सन हु इज ट्राइंग टू सेट अ बाउंड्री विल डेफिनेटली रिसीव लैशबैक। वहां पे एम्पथी सफर कर जाती है। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। अगर एक औरत है जिसका हस्बैंड उसे इमोशनली अब्यूज कर रहा है और करता ही चला जा रहा है, जैसे ही ये
कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ इमोशनल अब्यूज जस्ट टू बी मोर क्लियर।
ओके, आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ इमोशनल अब्यूज। लेट्स से ही इज ट्राइंग टू टेल हर दैट यू आर टू सेंसिटिव। लेट्स से द हस्बैंड वेंट आउट विद हिज फ्रेंड्स, इनवैलिडेटेड the wife who wanted to speak to him about something related to her family. He comes back home, she's upset, she's visibly upset, and he tells her, tum bahut sensitive ho, main thak ke aaya tha office se, fir mujhe mere doston ne bula liya, tum kyun beech mein aise, tumhara fir main ghar aao, mujhe to tumse baat karni hoti hai, fir tum aise muh bana ke baithogi, to mera baat karne ka man nahi karta. What has he done? He has turned that entire situation into making her feel guilty for feeling bad that her husband wasn't there to listen to her. So now, let's say this is a repeated pattern in various situations. This same guilt, trying to guilt the partner, or trying to make the partner feel bad about something, or just trying to embarrass the partner again and again. The moment this woman draws a boundary, where she says, I understand that you were tired, but as an husband, you have certain responsibilities towards me, and I don't feel guilty for, you know, being upset because I've asked you for certain things. What has she done? She's drawn a boundary. Because she has immediately told him that you can't guilt me into this. I understand. That is a separate thing. I am empathetic towards you. I am showing empathy. ठीक है, तुम थके हुए थे, तुम्हें दोस्तों के साथ बाहर जाना था, तुम दोस्तों के साथ आधा घंटा बाहर बाद में भी जा सकते थे, या तुम आधा घंटा जल्दी भी आ सकते थे। देर वर सो मेनी यू नो परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस टू दिस। व्हाई डिड यू चूज टू ओनली चूज द कॉम्बिनेशन दैट वाज हर्टफुल टुवर्ड्स मी? And then you come home and tell me that I am the one who's doing this to you. There is a difference between understanding and there is a difference between you walk over. Similarly, if let's take a child example. A child's parents keep telling him that, you know, you are too sensitive. You are too sensitive. You are too sensitive. You are too sensitive. This child is being emotionally repeatedly made to feel bad about himself again and again, again and again. So this child one day stands up and says, you know what? I am sensitive. I feel bad about things. Why are you making me feel worse about my situation? You don't have a solution to my answer. That is okay. But you can't make me feel worse about where I am. That is something I'm not happy about. Or who I am, for that matter, right? What is this child done? Child has drawn a boundary. Now you can imagine what is going to happen next. Either this child is getting thrashed up and this wife is getting thrashed up. If not physically, then definitely emotionally and psychologically. What is this? This is the lashback. This boundary setting construct is what is the biggest problem with trauma-bounded relationships or traumatic experiences. When the victim finally summons the courage and the confidence to go set up a boundary, and then they get repeatedly backed off. They get repeatedly, you know, attacked for it. This is why the process takes so long. Because the person who is doing this doesn't understand what they are doing because they themselves don't understand emotions. I am not saying everybody is an antisocial personality who just wants to harm the other person. I am not saying this. I am saying there are people who just don't understand the construct about what relationship patterns are following. Parent doesn't understand the child. Other people don't understand each other in relationships. And if one person understands and this person tries to change, they get beaten up from every angle. Because I am being aware. So I can see the trauma that is happening to me, but I also see trauma that is happening around me. So this one child will be able to see, अच्छा मेरी मम्मी के साथ भी ऐसा होता है, अच्छा मेरी बहन के साथ भी हो रहा है, अच्छा ये यहाँ पे भी हो रहा है. The mother is doing this to the father. I can see this also. I can see trauma everywhere. मेरे साथ तो जो है. So क्या होता है इंसान? Why is this? Why are people who are, you know, in that traumatic situation so prone to depression? Because I can see what is happening to me, and I can see it around me also. So my sense of helplessness is so high. तो लाइक मैं अपने लिए बदलूं या कि 1500 लोग जो मेरे साइड में इनके लिए बदलूं, क्योंकि दिस इज नॉट अ सिंगुलर वॉल दैट आई एम रनिंग. आई एम नॉट फाइटिंग दिस वन पर्सन ओनली फॉर मी. आई एम डूइंग दिस फॉर सो मेनी अदर पीपल अराउंड मी बिकॉज सो मेनी अदर्स गेट अफेक्टेड बाय द सेम ट्रॉमा. दिस इज वाई इट्स नॉन एज कॉम्प्लेक्स बिकॉज देर आर सो मेनी एलिमेंट्स अटैच टू इट एंड बिकॉज इतने टाइम तक चलता है और इतना प्रोग्रेसिव है और इतने सारे डोमेन्स पे अफेक्ट करता है कि इंसान को जब वो अनटैंगल करने पे हम आते हैं तो उसी में सालों साल लग जाते हैं जस्ट टू गेट दिस पर्सन अनटैंगल्ड. कभी ऊन बाजार से खरीदो और वो गलती से खुल जाए और वो इंटैंगल हो जाए, उसको जब हम सुलझने पे बैठते हैं कितना समय लग जाता है. And the quality of that wound also matters. If the quality of the relationships are poor, if this person is not resilient, if this person doesn't have the strength, this process will just keep taking longer and longer. And most people just spend years being traumatized, being in trauma relationships, and then years trying to fix it.
So, Divya, what I understand, it could be like there is a parent-child and parent is always telling child ki aap ye pehno. Ye achha nahi lag raha, go and change, ye pehno. So that is taking away sense of autonomy of a child. So that might be traumatizing for a child if that child is sensitive in that case. And when they draw a boundary ki okay, I will not listen to you, I will wear what I want, there is some passive aggression, like parents guilt trip them ki haan baat nahi kar rahe 2-3 din tak, ya fir ki tum to badtameez ho, ya there is lot of aggression. That kind of situation you were talking about. And this one child, suppose चार बच्चे हैं एंड वन चाइल्ड अंडरस्टैंड्स कि क्या हो रहा है. मे बी डैट चाइल्ड इज सेंसिटिव एंड इमोशनली मैच्योर एंड डैट चाइल्ड इज इन दैट इमोशनली इमेच्योर एनवायरमेंट जहाँ पे इतनी ज़्यादा गिल्ट ट्रिपिंग और मैनिपुलेशन हो रहा है औरों के साथ, इतना ट्राइंगुलेशन हो रहा है और वो उसको दिख रहा है सब कुछ क्या हो रहा है, बाकियों को नहीं दिख रहा है. तो ऐसा बच्चा जो कि इतना इमोशनली मैच्योर है या सेंसिटिव है और वो ऐसे एनवायरमेंट में है, तो उसके साथ क्या होगा? मतलब हाउ वुड दैट चाइल्ड गेट इम्पैक्टेड एंड इफ देर इज अनदर चाइल्ड जो ढीठ है उसको सम वो उसके लिए ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, उसके साथ क्या होगा? लाइक बोथ टू चिल्ड्रन काइंड ऑफ इन सेम फैमिली
कैन बी ब्लिस फॉर सर्टेन चिल्ड्रन. नो इट्स नॉट. देर आर व्हेन वी लुक एट द सिचुएशन इसमें देर इज वन कॉम्पोनेंट दैट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज वॉट एज रेंज डिड दे बिलोंग इन एंड देन हाउ दैट ट्रॉमा कैन बी लुकड एट इफ एंड you know it's also a very commonly seen phenomenon. It's mostly the oldest child which is research based, which shows that they want to break the generational trauma because they are under the most amount of distress. Usually this is what we call as the the middle child, the older child and the younger child. There are theories attached to these children, what kind of personalities do these theories are. Generally dekha jata hai jo sabse chote hote hain ghar mein वो उनको कुछ भी करने देते हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, वो आराम से जी रहे हैं. जो सबसे बड़ा होता है उसके अंदर उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो जनरली बहुत ही एंग्शियस होते हैं. जो मिडिल चाइल्ड होता है वो कंफ्यूज होता है, उसको उसको वो भी बहुत एंग्शियस होते हैं, बट वो यूजली कन्फ्यूज होते हैं और थोड़े उनकी ड्राइविंग कैपेसिटी एंड ऐसे ड्राइविंग इन लाइफ में जब वो कुछ कर रहे होते हैं तो बड़े ही उबड़ खाबड़ से होते हैं. सो दीज आर वेज ऑफ डिफाइनिंग द चाइल्ड नंबरिंग बेसिकली. लाइक यू सेड, अगर एक बच्चे को पता चल गया कि अच्छा ठीक है मेरे साथ तो हो रहा है ट्रॉमा इस घर में बैठ के, और बाकी हैं तीन जिनको नहीं एहसास हुआ है अभी तक, जनरली दिस वन चाइल्ड विल फाइट फॉर ऑल फोर. बिकॉज इफ दिस चाइल्ड ट्राइज टू ब्रेक द जेनरेशनल ट्रॉमा बाय कम्युनिकेटिंग विद द पेरेंट्स, यूजली इट कम्स ऑफ एज रिबेलियसनेस. बिकॉज see, you don't expect a child to be emotionally mature either. I won't expect a 12-year-old to have maturity about handling their emotions. So what is this child's way of handling emotion? Is scream, shout, throw a temper tantrum, cry, be depressed, be anxious, try to divert their mind here and there. So this is how they deal with it. The youngest deals with generational trauma, ki mujhe koi farak nahi padta, jo marzi jisko jo karna hai kar le. क्या करोगे, ज्यादा से मारी तो लोगे और क्या करोगे मुझे. दैट्स हाउ द यूजुअली द यंगेस्ट चाइल्ड डील्स विद इट. द मिडिल चाइल्ड कैन वेरी, डिपेंड करता है, कभी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं कभी नहीं. नाउ इफ लेट्स से वन चाइल्ड डिसाइड्स टू ब्रेक दिस ट्रॉमा, व्हाट विल स्टार्ट हैपनिंग, दिस पेरेंट माइट स्टार्ट सिंगलिंग आउट दिस चाइल्ड,
टारगेटिंग
बी लाइक ठीक है हमारे पास तो और भी है ना, ये जा रहा है जाने. Shaming this child, embarrassing this child, making the other children feel that what this child is doing is wrong. So then the other children have a decision to make. Do they want to support the child or do they want to support the parent? This has a lot to do with the dependency factor. See, yahan pe hum thoda cultural element baat karenge. Jaise ki in the West, the cultural element is ki when the child turns 18, the child is put out of the house, the child has to support themselves financially and in every other way. So, my dependency on the parent unity is very low. So, you will be independent, right? What my mind is doing, I will do it. So, if my trauma bonding is with my parents and my parents are the reasons why I am feeling traumatized, there is a very high probability that I might just get out of it. There will be remnant effects of that trauma in my future relationships, etc. That is a different domain of the discussion. अगर हम हमारी कम्युनिटी बेस्ड अपब्रिंगिंग की बात करें, जिसको हम कम्युनिटी में ज़्यादातर देखते हैं अपने देश में, इसमें क्या होता है, आप 50 साल के हैं तो भी आप अपने माँ बाप के साथ रह रहे हो, You're not financially dependent on them, but there is a dependency. However, for a young child, there is an immense amount of dependency. So, if a 21-year-old child is fighting the parents for generational trauma, a 14-year-old may not support this 21-year-old. Not because they don't believe in the construct, but because there is a fear that if I also do this, my parent will single me out and I am in the house. I am dependent on them. What if they kick me out?
Survival, basically.
It's a survival instinct. So a lot of children, in fact, in therapy, I see so many children who continue to live and exist in houses that have nothing good to provide them emotionally at times, just because they know that they're dependent on them for something or the other. A physical dependency, a more materialistic dependency. The emotional dependency may not be there. What is my emotional dependency on trauma? Why am I continuing to choose to stay in a traumatic environment? For what? See, there is one element where there is a bonding. There is an emotional bonding. That's an element that I've kept aside. But a lot of times, it's a lot to do with the financial dependency. Ki main kyun nahi nikal sakti? Mere paas abhi ye option hi nahi hai nikalne. So, to answer your question, when you said that, you know, there is one child who understands trauma and is trying to change and the other children don't, or the other children really doesn't care. Maybe that person doesn't care. Maybe that parent has decided to unload all their generational trauma only on one child. So this one child is fighting so hard. Or it could just be that this child feels that there is a dependency and they don't want to get out of it. It can be either of this. And you can only pinpoint it once you know better about them. There is no other way of, you know, understanding why this child is behaving the way that they are doing, until unless you actually get into the depths with them.
In a way, it is good and bad as well, that you know it and you know it. As in, if one realizes it, that, okay, this guilt trip and manipulation is happening, they will fight it back and they will bear the bash. Ki haan, unko sari fir wo passive aggression ya aggression milega. In that way, it is bad, but it is good in a way that they can heal themselves, apne aage ki future generation pe khatam karenge ye cheez. So it's a good as well. But they will have
it
to
depends.
Suffer.
It depends on how is this person able to deal with it, A, and it depends on how is this person resonating the same both ways. Just because somebody is aware of the trauma does not necessarily mean that they're healing from it.
Mm-hmm.
It's a different situation. Mujhe pata hai mujhe depression anxiety hai, but main usko kuch kar nahi rahi. Mujhe pata hai. Mm-hmm. Usse main theek nahi ho jaungi. Awareness will not fix me. Awareness is the stepping stone to getting better though. But you have to do more things after you get aware. Then there are secondary steps that you take. You get into therapy, you read self-help books. You do other you get into specific therapy interventions for trauma-based. And then you can slowly probably incorporate your siblings into it as well. Even if the sibling may not be understanding this, there is a very, very high probability that once the sibling sees that the other sibling has gotten better and improved, the younger siblings or the other siblings may be tempted to get into that same situation. But again, the pushback. There will be a lot of pushback, which is the reason why therapy goes on for as long as it does.
So, in this trauma episode, we have known what emotional abuse is. How to identify that you are being manipulated or emotionally abused. या कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपकी फैमिली में जनरेशनल ट्रॉमा है या नहीं, और वो आपको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, आपके अंदर सेल्फ डाउट कैसे क्रिएट कर रहा है, या क्रेविंग फॉर परफेक्शन कैसे क्रिएट कर रहा है आपके अंदर डर, और व्हाई हाउ इट इज़ होल्डिंग यू बैक. ये सब बातें हमने जानी दिव्या दावर के साथ, और ये सब बातें ऐसी है डेट कैन लीड टू वेरी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स लाइक पीपल प्लीजिंग, लाइक प्रोक्रेस्टिनेशन, लाइक सब्सटेंस अब्यूज़. हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कि कैसे इट लीड्स टू पीपल प्लीजिंग और कैसे हम रिजिलियंस डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर और अपने बच्चों के अंदर, किस टाइप का बिहेवियर और कंडीशनिंग हम अपने बच्चों की करें कि उनको हम ट्रॉमा रिजिलियंट बना सकें, कि उनको फ़र्क ना पड़े डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन से और उससे लर्न करें, बल्कि ऐसा हम अपने बच्चों को कैसे बनाएं और ख़ुद ऐसा कैसे बने, ये सब बातें हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच. आई होप यू लाइक्ड इट, यू फाउंड इट रेलेवेंट एंड हेल्पफुल. थैंक्स अ लॉट.